تو بہرحال آگے ہے جی سورت واقعہ 96 آیات ہیں، 56 نمبر کی سورہ ہے. کامیاب اور ناکام ہونے والے تین گروہ، یہ ہے ون لائنر اس کا آنسر، پوزیشن ہولڈر، پاسرز اینڈ فیلئرز. آپ نے میں نے آج تک یہی تین نام سنے ہیں. یا کسی کی پوزیشن آ جاتی ہے، خواہش تو سب کی ہوتی ہے لیکن سب آتے نہیں ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں کیونکہ محنت تھوڑوں نے کی، وقت کا استعمال کم لوگوں نے کیا. پاسرز بہت سارے ہوتے ہیں، یہ صحاب الیمین ہے، وہ پہلے سابقون الاولون مقربون ہیں، اور فیل بھی کچھ ہو ہی جاتے ہیں، وہ ہیں جی اصحاب الشمال. قیامت کے ناموں پہ سے یہ نام ہے سورت کا، الواقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ الرافیہ. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو بکر نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہو چلے، یعنی چند بال وائٹ ہو گئے آپ کے. آپ نے فرمایا مجھے ہود، الواقعہ، مرسلات، اور اما یتسالون، اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا. یہ ترمذی کی روایت ہے 3297. قیامت کے تذکرے اور سورت خود میں پچھلی قوموں پہ عذاب کی باتیں ہیں کہ میری قوم پہ بھی عذاب نہ آئے، اور آخر میں فاستقم کما امرتا، آپ کو جیسے حکم دیا گیا آپ بس تبلیغ کریں اور سیدھے ان کے ساتھ چلتے رہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، 1 سے 38 آیات ہیں، رکوع نمبر 14 ہے. روزے قیامت کے تین گروہ، اور اللہ کرے کہ میں اور آپ پوزیشن ہولڈرز میں سے ہو جائیں. جب قیامت قائم ہو جائے گی، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. پھر وہ مثل پرگندہ غبار کے ہو جائیں گے، اور تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے. دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے، اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں. اللہ ہمیں نہیں آگے والوں میں کر دیں. اور آگے والے کون ہوں گے؟ جو ففیرو اللہ، نیکیوں میں دوڑ دھوپ کر رہے ہوں گے. لکھ کے رکھ لیجئے کہیں، چھپا کے بند کر کے، یہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہوں گے، جو قلم کے جہاد سے لے کر تلوار اور تیر کے جہاد تک پہنچیں گے، وقت اور حالات کی نوعیت سے. یہ بڑا باریک نقطہ ہے، بہت کم لوگ جانتے. مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہوئے لوگ کہتے ہیں حوریں ملیں گی، اور آپ کہتے ہیں حوریں کن کو ملنی ہیں؟ پڑھے قرآن کھولیے، مجاہدین فی سبیل اللہ کو. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس وقت ہم کرنے کیا لگے ہیں؟ ہم پاسرز میں سے اپنے آپ کو اٹھا کر پوزیشن ہولڈرز میں لے جانے کی کوششوں میں ہیں. پاس تو انشاءاللہ ہو ہی جانا ہے، اللہ نے چاہا اگر شرک نہ ہوا تو. اور سورت فاتر میں آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ امت مسلمہ کے تین گروہوں میں، ایک ظالم لنفسی، اور ایک سابقم بالخیرات، اور تیسرے مقتصد. تو ابھی تک ہم مقتصد ہیں سارے، کوئی بھی ہم میں سے ایک نہیں ہوگا کہ جو بھاگ دوڑ کر رہا ہو. اب ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ ففیرو اللہ، بھاگ دوڑ نیکیوں میں. اصحاب الیمین سے السابقون الاولون، یا سابقون تک، یہ کوششوں میں کمی ہے. دیکھیں آپ سمجھیے اس بات کو، 99 تک دو فگر ہیں، 100 پہ 3 فگر ہیں. ٹیمپریچر 99 پہ ہو تو بوائلنگ واٹر ہوتا ہے، 100 ڈگری پہ پہنچ جاتا ہے نا تو بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے. 99 والا پانی پاؤں پہ گرے گا جلا دے گا پاؤں، لیکن 1 ڈگری اوپر لے جائیں تو بڑے بڑے انجنوں کو چلا دے گا. ہماری کوشش 99 پہ ہیں، ہم اس کو 100 پہ لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. اب سنیے ذرا قیامت کے دن کیا ہوگا. جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پرگندہ غبار کے ہو جائیں گے، اور تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے. دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں. اے اللہ ہمیں آگے سے آگے کر دے، آپ سب کو اللہ آگے کر دے. میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو بھی پیچھے نہ رکھے. دنیا میں ایک قدم آگے بڑھیے اور اس سے آگے بڑھیں. کیا پتہ چلا، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں. بہت بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے. دعا کرے اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے. آپ میں سے کوئی دعا کراتا ہوتا ہے مجھ سے، مجھے تھوڑوں میں کر دے؟ آج دعا کروں گی اللہ آپ کو تھوڑوں میں کر دے. ایک شخص تھے، وہ خانہ کعبہ میں بیٹھے بس یہی دعا کر رہے تھے، اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے، تھوڑوں میں کر دے. کسی نے کہا یہ کیا دعا ہے؟ کہا تم نے نہیں پڑھا قلیل ما تشکرون، قلیل ما تذکرون، اور قلیل ما تعلمون القرآن؟ अब अपना ज़रा मुस्तकबिल सुनिए, अगर आप थोड़ों में हो गए तो आपको मिलेगा क्या। ये लोग सोने की तारों से बने हुए तख्तों पर एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। अल्लाह आप सबको सोने की तारों के तख्तों पे बिठाए। आज गद्दे के नीचे ज़रा तख्त देखिएगा कौन से मरा, और वहाँ सोने की तारे, सुभान अल्लाह। इनके पास ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, आमदोरफ्त करेंगे, आप खोरे और जग लेकर और ऐसा जाम लेकर जो बहती हुई शराब से पुर हो, जिससे न सर में दर्द हो न अकल में फतूर आए, और ऐसे मेवे लिए हुए जो इनकी पसंद के हों, और परिंदों के गोश्त जो इन्हें मरगूब हों, और बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें जो छुपे हुए मोतियों की तरह हैं। ये सिला है इनके अमाल का, न वहाँ बेहुदा बात सुनेंगे और ना गुनाह की बात, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाज़ होगी। कोई झगड़े की बात नहीं, कोई डांट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई बच्चों को डांटनी पड़ रही, कोई बीवी पे मर्द नहीं चीख रहा, कोई बीवी मियाँ पे नहीं चीख रही, सलामन सलामा। अल्लाह आपको मुझे इसी अंजाम के काबिल कर दे, बस ये तो भी कहूँगी। अब सेकंड, अब जो पासर्स हैं उनका अंजाम सुनिए, यानी वो थे VIPs, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास के पैकेज में, 5-स्टार पैकेज लेके जाने वाले। अब सुनिए इकोनॉमी क्लास, और दाएं हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं दाएं हाथ वाले, वो बगैर कांटों की बेरी और तह बतह केलों और लंबे लंबे सायों और बहते हुए पानी और बकसरत फलों में जो ना ख़त्म हो ना रोक लिए जाएं, और ऊंचे ऊंचे फर्शों में होंगे। हमने इनकी बीवियों को ख़ास तौर पर बनाया है, और हमने इन्हें कुंवारियाँ बना दिया है, मोहब्बत वाली, और हम उम्र हैं दाएं हाथ वालों के लिए। इधर हैं हूरे, समझ आई? मियाँ सब से कहे कि हूर लेनी है तो फफेर्रू इल्लल्लाह, नेकियों में भाग दौड़ करें, अपने साथ बड़ी बना लें अपने हस्बैंड को, बिलीव मी। आप कोर्स इधर करें, उनको घर जाके कराएं, वो आपको छोड़ने आए रास्ते में बात करें, घर जाके लेसन शेयर करें, आप देखिएगा जिस शौहर बीवी के हाथ में एक किताब या एक पारा खुलता है ना, वो कॉलेज लाइफ वाले लड़की लड़के वाला कपल बन जाते हैं। सच्ची बताऊँ आपको, वो तो शायद ही एक्सपीरियंस किया, और वहाँ तो अभी मोहब्बत भी हो गई और शादी नहीं हुई, यहाँ तो शादी हो गई अब मोहब्बत भी हो जाएगी। आप में से जिसको गिला है कि उसके मियाँ उससे मोहब्बत नहीं करते, या मियाँ साहब कहते हैं बेगम आप तो बड़ी बेकार और बोरिंग है, आप एक दफ़ा मिल के इकट्ठे कोर्स करें, ऐसे मोहब्बत के तार जुड़ेंगे, और वो जो बॉन्ड बनता है, जैसे मैं अपनी सहेलियों से हो जाती है, क्योंकि एक ही सबक क्या था, पढ़ते हैं मिलते हैं तो हमें मोहब्बत नहीं हो जाती, ये मोहब्बत आपको अपनी फैमिली से होगी। आप जिस दोस्त सहेली कज़न घर के, अगर आप घर में 3-4 लोग हैं ना, उनको ज़रूर कोशिश करवा के साथ ले आएं, फिर देवरानी जिठानी का झगड़ा ख़त्म, नंद बाबा जी का वो गुस्सा गिला ख़त्म, सास बहू साथ आ गई ना तो मौजे ही मौजे, घर का माहौल भी खुशगवार। यहाँ हम वैसे आपको अलग अलग बिठाएंगे, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अभी तो अपने किया ही नहीं कोर्स, इंशाल्लाह। तो देखिएगा, 3 गिरोह हैं, असहाबुल जमीन ये मोमिन हैं, असहाबुल शिमाल कुफार हैं, और असाबिकून असाबिकून मोहसिनीन हैं, और इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन कान्नका तराहू। एहसान क्या है? गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। हज़रत उमर ने इस आयत को सुनकर अल्लाह के नबी की खिदमत में अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या अगली उम्मतों में से बहुत लोग साबिकीन में दाखिल होंगे और हम में कम लोग? यानी उन्होंने अव्वलीन और आखरीन का तकाबुल क्या किया कि हम बाद वाले हैं तो वो पहले थे? इसके एक साल के बाद यह आयत नाजिल हुई कि अगलों में से भी बहुत और पिछलों में से भी बहुत। अल्लाह के नबी ने हज़रत उमर से कहा, सुनो, आदम से लेकर मुझ तक सुल्लतुन, लफ्ज़ आया ना सुल्ला, सुल्ला है, और सिर्फ मेरी उम्मत भी सुल्ला है। हम अपने सुल्ला को पूरा करने के लिए इन हबशियों को भी ले लेंगे जो ऊँट के चरवाहे हैं, मगर अल्लाह के वहदहू ला शरीक होने की शहादत देते हैं। ये आयत 13-14 पे है, आप इस एनालॉजी को समझें। पिछलों में पूरे अंबिया के और नबी सल्लम के सहाबा तक का दौर लेना, उस पर भी यही रेशियो है, और बाद में उम्मत मुस्लिमा का लीजिए तो उसमें भी यही रेशियो है कि शुरू में ज़्यादा बाद में कम। सहाबा करम कहते हैं कि अरबियों का नबी सल्लम के सामने आना और आपसे मसाइल पूछना हमें बहुत नफ़ा देता था। एक मरतबा एक अरबी ने आकर कहा, अल्लाह के रसूल, कुरान में एक ऐसे दरख्त का भी जिक्र है जो तकलीफ़ देता है, आपने पूछा वो कौन सा है? उसने कहा, बेरी का दरख्त। आपने फरमाया, फिर तूने इसके साथ ही ये लफ्ज़ क्यों नहीं पढ़ा, महदूद, ये नहीं पढ़ा कि इसके कांटे अल्लाह ने दूर कर दिए हैं और इनके बदले फल पैदा कर दिए हैं और हर बेरी में बेहतरीन किस्म के जायके होंगे जिनका रंग और मज़ा मुख्तलिफ होगा। दुनिया में बेरी के फल तोड़ते थे, कांटा चुभता है, तो वो कहता है अच्छा वहाँ भी कांटों वाला दरख्त होगा, कांटों वाली बेरियाँ। तो साहबा कहते हैं कि अरबी सवाल कर लेते तो हम खुश थे, यानी वो कहते थे जो डांट पड़नी इसको पड़ जाए, हम क्यों ऐसी बात करें। मुहज़्ज़ब लोग वैसे भी सोच के बोलते हैं और गैर मुहज़्ज़ब बोलने के बाद भी नहीं सोचते। वो कहते हैं तुम सोचो, ये बात क्या कर गया बंदा, ये पूछ क्या गया, ये इसने बात क्या की है, अकल नहीं तो मौजे ही मौजे। मज़े में वही लोग, अल्लाह अकबर। क्या सीखा? जन्नत के बारे में मज़ीद जानना है, अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ना है हवाओं की तरह और बादलों की तरह और समंदर की लहरों की तरह इंशाल्लाह, और गुनाह की बात नहीं सुननी, बेहुदा कलाम नहीं सुनना। आगे थी रुकू नंबर 15 आयत 39 से 74। सुल्लतु मिनल अव्वलीन, अल्लाह बादलों से पानी बरसाने वाला है। जमे गफीर, यानी बहुत बड़ा गिरोह है अगलों में से और बहुत बड़ी जमात है पिछलों में से। और बाएं हाथ वाले क्या हैं? बाएं हाथ वाले गर्म हवा और गर्म पानी में होंगे और स्याह धुएं के साए में, जो ठंडा है ना फरहत बख्श। बेशक ये लोग इससे पहले बहुत नाजों से पले हुए थे और बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार करते थे और कहते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो क्या हम दोबारा उठा खड़े किए जाएंगे, और क्या हमारे अगले बाप दादा भी। आप कह दीजिए कि यकीनन सब अगले और पिछले ज़रूर जमा किए जाएंगे एक मुकर्रर दिन के वक्त, फिर तुम्हें गुमराह हो जुटलाने वालों। अलबत्ता खाने वाले हो थोर का दरख्त कैक्टस, और इसी से पेट भरने वाले हो, फिर इस पर गर्म खौलता पानी पीने वाले हो, फिर पीने वाले भी प्यासे ऊँटों की तरह। क़यामत के दिन इनकी मेहमानी ये है, हम ही ने तुम सबको पैदा किया, फिर तुम क्यों बावर नहीं करते। अच्छा फिर ये बतलाओ कि जो मनी तुम टपकाते हो, क्या इसका इंसान यानी बच्चा तुम बनाते हो या पैदा करने वाले हम ही हैं? हम ही ने तुम में मौत को मुतय्यन कर दिया और हम इससे हारे हुए नहीं कि तुम्हारी जगह तुम जैसे और पैदा करें और तुम्हें नए सिरे से इस आलम में पैदा करें जिससे तुम बिल्कुल बेखबर हो और तुम्हें यकीनी तौर पर पहली दफ़ा की पैदाइश मालूम है, फिर क्यों तुम इबरत हासिल नहीं करते। अच्छा फिर ये भी बतलाओ कि तुम जो कुछ बोते हो इसे तुम ही उगाते हो या उगाने वाले हम हैं? अगर हम चाहें तो इसे रेजा रेजा ही कर दें और तुम हैरत के साथ बातें ही बनाते रह जाओ कि हम पर तो तावान ही पड़ गया है, बल्कि हम बिल्कुल महरूम रह गए। अच्छा ये तो बतलाओ, जिस पानी को तुम पीते हो इसे बादलों से भी तुम ही उतारते हो या हम बरसाते हैं? अगर हमारी मंशा हो यानी मर्जी हो तो हम इसे कड़वा जहर कर दें, फिर तुम हमारी शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते? अच्छा ज़रा ये भी तो बतलाओ कि जो आग तुम सुलगाते हो इसके दरख्त को तुमने पैदा किया या हम इसके पैदा करने वाले हैं? हमने इसे बेसबब नसीहत और मुसाफिरों के फ़ायदे की चीज़ बनाया, बस अपने बड़े रब के नाम की तस्बीह किया करो। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम, जो तस्बीह ज़ुबान पे आए ना वो कर दिया करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर ज़क्कूम यानी थोर का एक कतरा भी दुनिया की ज़मीन में टपका दिया जाए तो दुनिया वालों की मईशत बिगड़ जाए, भला इस आदमी का क्या होगा जिसकी ग़िज़ा ही ज़क्कूम हो। अल्लाह में ऐसा ना खिलाना, करेले लोग नहीं खाते, कड़वी चीज़ें नहीं अच्छी लगती लोगों को, अल्लाह ना करे वहाँ खानी पड़ गई। तो क्या सीखा? कि गुनाह पर इसरार नहीं करना, आखिरत का यकीन रखना है, नसीहत लेनी है, सबक लेने हैं, शुक्र करना है, तस्बीह करनी है और गौर व फिक्र करना है, और अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। आखिरी रुकू है सूरत का, रुकू 16 75 से 96। अपने रब अज़ीम के नाम की तस्बीह करो। फला उक्सिमु बिमवाक़िन नुजूम, बस मैं कसम खाता हूँ सितारों के गिरने की, और अगर तुम्हें इल्म हो तो ये बहुत बड़ी कसम है कि बेशक ये कुरान बहुत बड़ी इज्जत वाला है जो एक महफूज किताब में दर्ज है जिसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतरा हुआ है। बस क्या तुम ऐसी बात को सरसरी और मामूली समझ रहे हो और अपने हिस्से में भी यही लेते हो कि छुटलाते फिरो? इस आयत पे बाद में गौर कीजिएगा, क्या तुम्हारा यही नसीब है कि तुम कुरान को झुटलाओ, नबी को झुटलाओ, इस्लाम को झुटलाओ, पर्दे को झुटलाओ, सूद को झुटलाओ? क्या ये बदबख्ती है तुम्हारी कि अल्लाह के हर हुक्म पे तुम नो ही कहोगे, हर नेकी के मौके पे तुम नो ही कहोगे, हर वक्त तुम मजबूर हो, हर वक्त तुम्हारा कोई उज़र है, तो याद रखो कि अल्लाह से तौफीक मांगो। हालात तो तुम्हारे ठीक ही हैं और भी ठीक हो जाएंगे। अब याद दिलाया जा रहा है कि वक्त कितना कम है तुम्हारे पास। बस जब के रुख नरहरे तक पहुंच जाए, तो तुम इस वक्त आंखों से देखते रहो। हम इस शख्स की निस्बत तुम्हारे बहुत करीब होते हैं, लेकिन तुम देख नहीं सकते। यानी मौत के फरिश्ते और अल्लाह ताला न जाने किस एंगल से इस बात को हम देखें कि बिल्कुल हमारे उस वक्त मरने वाले के करीब है। यहाँ डेथ बेड पे कोई लेटा है ना, तो वहाँ ये फरिश्ते और ये सारे जो हैं वो वहाँ करीब होते हैं। आमतौर पर देखिए, पहले से बताओ ना, तो घर के और फैमिली मेम्बर जो हैं वो करीब आ जाते हैं। अल्लाह कहते हैं हम भी वहीं होते हैं, लेकिन तुम हमें देख नहीं सकते। और आपको पता कि मुर्दे को दिखने लग जाते हैं फरिश्ते। बस अगर तुम किसी के जेरे फरमान नहीं और इस कॉल में सच्चे हो, तो ज़रा इस रूह को तो लौटा दो। बुलाओ NHS वालों को, बुलाओ हॉस्पिटल वालों को, बुलाओ आगा खान वालों को। वो नहीं आते तो किसी और वाले को बुला लो। बस एक दफ़ा ये बैक ट्रैक कर दें, ये रूह जिस्म से निकल गई है ना, इसको एक बार अंदर डाल दो। तरजीह नहा कर सके आज तक, कितनी तरक्की हुई, लेकिन आज तक लोग ये ना कर सके, क़यामत तक ना कर सकेंगे। बस जो कोई बारगाह इलाही से करीब होगा, इसे तो राहत और ग़िज़ाएँ हैं और आराम वाली जन्नत है। और जो शख्स दाएं हाथ वालों में से है, तो भी सलामती है तेरे लिए कि तू दाएं हाथ वालों में से है। अब सारे तीनों गिरोह का खुलासा है कि चलो बच तो गए हो ना जहन्नुम में जाने से, लेकिन अगर कोई झुठलाने वालों में गुमराहों में से है, तो खौलते हुए पानी के साथ उसकी मेहमानी है और दोजख में जाना है। ये खबर सरासर हक और कतन यकीनी है। ये कोई फॉल्स न्यूज़ नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये इवनिंग न्यूज़ नहीं है कि बाद में पता चले गलत था, सिर्फ शायद सुर्खी लगा दी थी अपनी अखबार बेचने को। ये सच्ची खबर है। बस तो अपने अजीम व शान परवरदिगार की तस्बीह कर, करिए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। क्या सीखा? कलाम इलाही से बेइतनाई नहीं बरतनी, इस किताब को इतनी अहमियत देनी है जितनी आज तक किसी और चीज़ को नहीं दी। कलाम अल्लाह को झुठलाना नहीं, गुमराहों में नहीं होना, तस्बीह करनी है और सवाल करना है खुद से कि मैं किस गिरोह में शामिल होना चाहती हूँ, पहले में, दूसरे में के तीसरे में। असहाबुल शिमाल नो, असहाबुल यमीन नहीं, साबिकुन असाबिक। कोशिश पोजीशन की करेंगे ना, फर्स्ट आने की, माइट भी कुछ कमी पेशी हुई तो सेकंड आ जाएंगे। सेकंड पे कोशिश करेंगे तो ज़रा सी गलती हो तो थर्ड, और अगर आपने पोजीशन की ख्वाहिश ही ना रखी तो डर है कि 33 मार्क्स आएंगे, और वो भी ग्रेस मार्क्स। तो हमेशा हाई अचीवर, फ़फ़िरू इलल्लाह, ये इस बारे में थी। खूब बड़ी नेकी का इरादा करें, फिर छोटी भी होगी तो इट्स ओके। और अल्लाह से कभी छोटी चीज़ ना मांगा करें। बहुत बड़ी चीज़ मांग के आई हूँ आज भी मैं अल्लाह से, और मेरा ईमान है कि अल्लाह ने मुझे देनी है वो, क्योंकि मुझे पता है मेरे रब के पास बहुत कुछ है। आप और मैं अपने लिए छोटे छोटे बर्तन लेके, छोटे छोटे ज़र्फ़ के साथ, छोटी छोटी नेकियाँ, छोटे छोटे कामों की दुआएं करते हैं। अल्लाह वो छोटे भी नहीं कराता, वो भी हमारे उज़र खेल तमाशे में गुजर जाते हैं। बड़े काम अल्लाह ले ले हमसे। और बड़ा काम वो नहीं है जो शोहरत वाला काम हो, बड़ा काम वो होता है जो कबूल हो जाए और दूसरों को नफ़ा देने वाला बन जाए। आगे आप पारे की आखिरी सूरत अल हदीद और मुसब्बिहात की पहली सूरत अल हदीद। 57 नंबर है सूरत का और 29 आयात हैं। ख़जाना है इसमें, एक फेवरेट मोस्ट सूरास में से। इसको अलग से कई बार किया, इन डेप्थ में भी अल्लाह की रहमत से कर लिया इसको, और हर दौरे कुरान और हर तफसीर के सेट में तो है। आइए देखते हैं आज आप और मैं इसमें से क्या पिक करते हैं इस पारे के थीम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत वहुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर। रुकू नंबर 17, पहली 10 आयात हैं। अल्लाह की राह में खर्च करना। जो मखलूक आसमान और ज़मीन में है, वो अल्लाह की तस्बीह करती है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। आसमान और ज़मीन में इसी की बादशाहत है, वही ज़िंदगी देता है मौत भी, और वो हर चीज़ पे कादिर है। वही पहले है और वही पीछे, वही जाहिर और वही मख्फी, और वो हर चीज़ को बखूबी जानने वाला है। वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया। वो खूब जानता है इस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और जो इससे निकले, और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ चढ़कर इसमें जाए, और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है, और जो तुम कर रहे हो वो अल्लाह देख रहा है। आसमानों की और ज़मीन की बादशाही इसी की है, और तमाम काम इसी की तरफ लौटाए जाते हैं। वही रात को दिन में ले जाता है, और वही दिन को रात में दाखिल कर देता है, और सीनों के भेद का पूरा आलिम है। अल्लाह पर और इसके रसूल पर ईमान ले आओ, ये काम आप करो। अल्लाह ने तो अपनी खूबियाँ बता दी, और इस माल में से खर्च करो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें दूसरों का जानशीन बनाया है। विरसे में मिला था ना तुम्हें, तुम भी किसी को दे के चले जाओगे। हर रोज़ नोट देते हो और चीज़ें लेते हो, कोई नोट अपने पर्स में नहीं रखता। तो जो तुम्हारे पास रहना ही नहीं है तो उसको अलबाकी के हाथ में दे दो। बस तुम में से जो ईमान लाए और खैरात करे इन्हें बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। तुम अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते, हालांकि खुद रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है। और अगर तुम मोमिन हो तो वह तुमसे मजबूत अहदों पर ईमान भी ले चुका है, और वह अल्लाह ही है जो अपने बंदे पर वाज़े आयतें उतारता है ताकि वह तुम्हें अंधेरों से नूर की तरफ ले जाए। यकीनन अल्लाह ताला तुम पर नरमी करने वाला, रहम करने वाला है। वालेकुम। अब इस अंदाज़ को फील कीजिएगा, इस सूरत में ये आएगा, बिल्कुल वही अंदाज़ है जो सूरत तौबा में भी आया था कि वमा लकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाहि साक़लतुम इलल अर्ज़। यहाँ भी बिल्कुल वही अंदाज़ है, मा लकुम तुम्हें क्या हो गया है जो तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारी मत मारी गई है, तुम्हारी अकल चली गई है, तुम्हारी अकल घास खाने चली गई। कोई भी स्टाइल ले लीजिए जो आपके लैंग्वेज के करीब हो, इसमें गैरत भी होती है, इसमें गुस्सा भी होता है, इसमें अफसोस भी होता है। क्या हो गया तुम्हें, तुम अल्लाह की राह में खर्च क्यों नहीं करते? लफ्ज़ फ्री सुनकर खुश होते हो, मुफ्त समझ के खुश होते हो, सारी दुनिया की दौलत दे दो कुरान की तालीम पे। एक एक बंदे के पास, दुनिया के अमीर से अमीर, कबीर से कबीर शख्स के पास इतनी दौलत नहीं है कि जो कुरान के एक लफ्ज़ के सीखने सिखाने पे खर्च करते। हमने इस किताब को फ्री कर दिया, मुफ्त कर दिया। जो मैंने लफ्ज़ बोला ना फ्री, वो यही फ्री बोला था। माले मुफ्त दिले पे रहम, बड़ा सा लिख देते फ्लायर पे, फ्री फ्री पिज़्ज़ा मिलेगा रात 12 बजे के बाद। बाहर लाइनें खड़ी हुई हैं कि 12 से घड़ी आगे जाए तो हम फ्री लें। मिड नाइट डील्स हैं आपके मुल्क के मेन्यूज़ में, बाहर की दुनिया में मिड नाइट डील वालों को जेल में डाल देंगे। बिलीव मी उनको इतना शौक़ नहीं है कि रात 12 बजे बैठकर पिज़्ज़ा खा रहे हों, क्योंकि ये सस्ता मिला इस वक्त खा लें। अल्लाह के रास्ते में जो लगेगा आपके मेरे अकाउंट में जाएगा, हेयर और देर डिपॉजिट स्लिप्स हैं ये सारी। तो अल्लाह कह रहे तुम्हें हो क्या गया, कभी तुमने ज्वेलर पे जाकर भी ये सोचा कितने का कितना चेक, क्या बड़ा तुम पैसे पूछते हो? तुम्हें दीन के नाम पे फौरन फिक्र लग जाती है कि मेरा वक्त कितना लगेगा, ख़त्म कब होगा, ये दौरे कुरान ख़त्म कब होना है, ये सवाल करते हो? कोई नया बंदा कर ले तो ही सोख है, पुराने बंदों को तो सोचना भी नहीं चाहिए। जो कहा था वो हो जाएगा, ये सवाल करने का है? आप ज़रा सोचिए तो सही कि अल्लाह की आयत में टोन क्या है, तुम्हें हो क्या गया है। और ये नए साहबियों को नहीं कही जा रही थी, ये सूरह हदीद उस दौर में नाजिल हुई कि जब मंझे हुए सहाबा से और उसके साथ वो जो दूसरे बाहर वाले लोग मिलने शुरू हो गए थे, निफाक वाले लोग, ये सहाबा में से एक भी ऐसा नहीं था। वो तो कल ही सुन लिया आपने, हुदैबिया से वापस आ गए थे, उनका तो क्या कहना, उनको तो अब जो कहेंगे वो मान जाएंगे। लेकिन नए लोग, छोटे छोटे ईमान होते हैं, कच्चे कच्चे दिल होते हैं, वो आए इसलिए थे कि आखिरी दिन की दुआ में शामिल होंगे, वो आते इसलिए हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा फिर ही जाएंगे। वो समझते हैं कि दौरे कुरान अगर रमज़ान में पूरा ना हो तो जरी ख़त्म हो जाना है। अल्लाह के बंदो क्या करते हो, तुम्हारा रब तो वो ये हिसाब उससे बाद में कर लेना। सुनार से चीज़ें ले आते हैं, अब कहते हिसाब बाद में करेंगे, वो कहते जाओ शादी खाओ, अपना सुना रहे ना, उसको पता मैंने आज भी इनसे ले लेना है, कल भी ले लेना, और जितना भी लेना है इनकी तो उम्मीद से ज़्यादा ही लेना है, उसको क्या परवाह है। तो रब वही है, अजर देने वाला वही है, काउंटर वही चलते रहेंगे, आपका एक लफ्ज़ भी ज़ाया नहीं होगा। आपने शायद 70 का ज़रब जमा तफरीक लगाई होगी, अल्लाह आपको 70 नहीं 770 दे देगा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे पकड़ के उसने हाथ डालकर आपको अजर दे देना, तो तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों इतनी छोटी बातें करते हो अल्लाह के रस्तों में? हमारे दिल बच्चों वाले हैं। तो बहरहाल दरअसल आसमान और ज़मीन की मीरास का मालिक तन्हा अल्लाह ही है। तुम में से जिन लोगों ने फतह से पहले फ़ी सबीलिल्लाह दिया है और क़िताल किया है वो दूसरों के बराबर नहीं बल्कि इनके बहुत बड़े दर्जे हैं। जिन्होंने फतह के बाद खैरातें दी और जिहाद किए, हाँ भलाई का वादा तो अल्लाह का इन सब से है, जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अल्लाह खबरदार है। अल्लाह को तुम्हारे दिलों का पता है। ऐसे लगता है बंदा वो झाग की तरह बैठ जाता। अल्लाह जी आपको मेरी ये बात भी पता है ना, अल्लाह जी आपको ये भी पता है ना। अच्छा अल्लाह ताला बस दूसरों को ना बताइएगा, बस आपको तो पता लग ही गई है ना, अब मैं आपसे छुपा नहीं सकती। तो क्या देखिए इसमें सहाबा की खूबियाँ, अल्लाह रसूल पर पक्का और सच्चा ईमान लाए और निफाक से बचने के लिए इनफाक करते थे। निफाक का इलाज इनफाक, लिख लें एक अलिफ लगा दे बस, इनफाक। इस पूरी सूरत का मेन थीम इनफाक फी सबीलिल्लाह, और ख़ास तौर पर टाइम बाउंड नेकी थी कि इस वक्त ये नेकी कर लो फिर पता नहीं कल मौका रहेगा कि नहीं। नेकियां कभी कभी सेल पे लग जाती हैं, तो जब नेकियां सेल पे लगे ना तो फ़फ़ेरू इलल्ला की तरह भाग भाग के दो चार ले लेनी चाहिए एक्स्ट्रा, जैसे सेल में से एक्स्ट्रा चीज़ें लेते हैं कि देने लेने में काम आ जाएंगी। कुछ नेकियां देने लेने वाली रख लीजिए। एक है आप अपने लिए कुछ खरीदते हैं, आपको पता है कि मुझे एक जोड़े की ज़रूरत है, मैं ले आती हूँ, एक जूता चाहिए जाके ले आती हूँ। पता नहीं वैसे किनको ज़रूरत होती है, मैंने तो आज तक अब याद ही नहीं, कभी के कभी किसी चीज़ की ज़रूरत भी होती है और लेनी पड़ती है, लेकिन सोच लेते हैं, मान लेते हैं एक की ज़रूरत पड़ी, आप जाकर दुकान से अपनी पसंद करके एक चीज़ बहुत उसे ले आते हैं। एक आप कहते हैं कि कुछ लेने देने के लिए भी रख, कभी देना पड़ जाता है किसी को कोई ना कोई। नेकियों में इतनी कंजूसी से नेकियां ना करें कि वो बमुश्किल आपको पूरी हों, और जिस दिन आप फौत हो गए उस दिन नेकियां बंद। लेने देने वाली नेकियां कीजिए, और ये क्या है, वल बाकियात सालेहात, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया। आपको पता है आपको अपने निकम्मे बच्चों को कितनी नेकियां देनी पड़नी है आगे जाके, ये प्यार से कहे, कोई बच्चा निकम्मा नहीं है, जाके कहे ना देना हो निकम्मे, हमारी टीचर ने कह दिया आप निकम्मे हो, लाड प्यार वाले। अम्मी पैसे देना, मामा 500 रुपये देना, अच्छा मम्मी 1,000 का नोट देना, मामा अभी आता, मामा मामा मामा, फिर जब मामा से डांट डूंट पड़ती है तो बाबा बाबा बाबा, खुशी से देते हैं ना, जाओ मेरा बच्चा तरावियाँ पढ़े, अब कहते जाओ आइसक्रीम खाओ, कमज़ोरी हो गई है। बच्चों को नेकियाँ आपको देनी पड़नी है कल। और मियाँ साहब वो तो इसी उम्मीद पे तो आपको भेज रहे हैं, आपको पता कि ज़्यादा ले आना कुछ, मैं भी तुमसे ही ले लूँगा। हमारे भाई बहनों ने भी हमसे बड़ा कुछ उस दिन मांगना है, आगे पढ़ेंगे, हर तरफ एक भाग दौड़ होगी कि कुछ नेकियां दे दो। लो यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिज़ भी बनी, तो अपने अलावा कुछ नेकियां एक्स्ट्रा रख लिया कर, कभी काम आएंगी, और उस वक्त जो आपको उसकी कदर आएगी वो बहुत प्यारी होगी। रिवायत सुन लीजिए, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं दरबारे रिसालत में था, अबू बकर भी थे, सिर्फ़ एक अबा आपके जिस्म पर थी, गिरेबान कांटे से अटकाए हुए थे, बटन नहीं था, थॉन कांटा चुभ भी सकता था। जिब्राइल नाजिल हुए, पूछा क्या बात है, जो अबू बकर ने फ़क्त एक अबा पहन रखी और कांटा लगा रखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उन्होंने अपना कुल माल मेरे कामों में फतह से पहले ही राह लिल्लाह में खर्च कर डाला है, अब इनके पास कुछ भी नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनसे कहो कि अल्लाह इन्हें सलाम कहता है और फरमाता है कि इस फकीरी में तुम मुझसे खुश हो या ना खुश हो, यानी दे के पछता तो नहीं रहे, नेकी की नियत करके अब तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा अपने ऊपर, क्या ज़रूरत है, और जाके मैसेज भी कर दिया कि मैं ये दे रहा हूँ या दे रही हूँ, क्या खुश हो कि ना खुश। इस पर अबू बकर सिद्दीक ने ये सब कहकर सवाल किया, जवाब मिला कि अपने रब अज़्ज़ व जल से नाराज़ कैसे हो सकता हूँ, मैं इस हाल में बहुत खुश हूँ, देने वाले ही बातें हैं। मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी देने वाले को खाली होता नहीं देखा, और उनके पास कभी कमी नहीं हुई। जिस दिन आपको मुझे ये बात समझ आ गई, तो वो अपने हाथ में रखने की बजाय अल्लाह के हाथ में दे के महफूज समझते। क्या सीखा, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना है, अल्लाह की राह में खर्च करना है, अल्लाह की सिफात पे गौर व फिक्र करना है, अल्लाह अल-ख़बीर है इसका यकीन रखना है, और निफाक से बचते हुए इनफाक फी सबीलिल्लाह करना है। कोई क्यों कहे कि दो, हम क्यों ना साहबा की तरह पूछे कि यसअलूनक माज़ा युन्फिकून, हम क्या खर्च करें, पैसे वाला पूछे कि मुझे देना है, घर वाला पूछे मैंने देना है, इल्म वाला क्यों बताए। देखिए जिसके पास जो है वो देना शुरू कर दें, इल्म वाले अपना इल्म दें, वक्त जिनके पास है वो वक्त दें, गाड़ियों वाले गाड़ी लगा देते हैं, तो मांगना नहीं चाहिए, इससे दीन गरीब लगता है, मिस्कीन है हमारा मंगता है दीन, नहीं हमारे दीन की इज्जत नहीं होगी तो हमारे बच्चे उस दीन से लेंगे क्या। तो लिहाजा अगली रुकू को सुनते हैं, रुकू 18 है, आयत नंबर 11 से 19। अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना देना है, मन जल्लज़ी युक्रिदुल्लाह कर्दन हसना, कौन है जो अल्लाह ताला को अच्छी तरह कर्ज़ दे, फिर अल्लाह इसे इसके लिए बढ़ाता चला जाए और इसके लिए पसंदीदा अजर साबित हो जाए। खामोशी, नो रिस्पॉन्स एट ऑल। आप कहेंगे आवाज़ चली गई, वाईफाई सिग्नल चला गया, देखो देखो जूम पे आवाज़ नहीं आ रही, यूट्यूब को क्या हो गया, फेसबुक का क्या हो गया, मिक्सलर को क्या हो गया। हम ऐसी आयतें सुनते हैं और खामोश, और अबू दहदा और अबू तलखा और फुलां फुलां फुलां, आप मालदार साहब वाले अखबारे में पढ़ चुके हैं, वो जवाब देते थे। हम हैं अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बात करते हैं जो दुनिया में नेकियों का नूर फैलाते थे, जो कुरान के नूर को फैलाने में तन मन धन माल लगाते थे। अल्लाह कहते हैं आओ उनका अंजाम देखना चाहते हो तो क़यामत के दिन तू देखेगा कि ईमानदार मर्दों और औरतों का नूर इनके आगे आगे और इनके दाईं तरफ दौड़ रहा होगा। आज तुम्हें इन जन्नतों की खुशखबरी है जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें हमेशा की रहाइश है। ये है बड़ी कामयाबी, ज़ालिकल फौज़ुल असीम। बच गए फ़फ़िरु इलल्लाह वाले, सोच सोच के नहीं, सोचियों पे गए तो गए, जो कर दिया सो कर दिया। अच्छे बड़े काम जज्बात में ही होते हैं, इमोशंस ही ज़िंदगी की बुनियाद है। अब इसके बरक्स दूसरा रुख तस्वीर का देखिए। उस दिन मुनाफिक मर्द और औरत ईमानदारों से कहेंगे कि हमारा इंतज़ार तो करो, हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें। और यहाँ टैक्स के एतबार से मुनाफिक कौन है? जो इनफाक से रुक गया तो निफाक आ गया, लिखना चाहें तो लिख लें। जो इनफाक से पीछे रहा उसमें निफाक ज़रूर आएगा, क्योंकि निफाक है ही हुब्बे दुनिया। कहेंगे ज़रा ठहरो वहाँ, तुम तो बड़ी रोशनियों में हो, क्योंकि हदीस में है कि बंदे की नेकियों का नूर जिस जिस जगह फैला होगा ना, वहाँ तक उसका नूर होगा क़यामत के दिन। मदीना से अदन तक, मदीना से फलां शहर फलां मुल्क तक रोशनी होगी। आपकी ये कोशिश से कहाँ खैर जाती है, आपको कोई पता? मैं कहती हूँ कि इस वक्त हमारे सारे पैसे का रुख अगर सोशल मीडिया पे चला जाए ना, तो वो जो ज़मीन के टुकड़े और लैंड्स ले लेकर इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं ना ऑन साइट पे, उससे जो खैर निकलती है वो तो एक लिमिटेड एरिया, एक मुल्क, एक शहर, और उससे आगे जाएगी ना। तो जो आप ऑनलाइन इस वक्त जो सुन रहे हैं, जिस वक्त जो काम कर रहे हैं, किसी ने तसव्वुर भी किया होगा कि उस बंदे की नेकी कहाँ तक जाए? और आपको पता है कि वेबसाइट्स के अंदर एक ऑप्शन होता है एडमिन कोड के अंदर कि आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कहाँ से कोई देखता है, आपके यूट्यूब चैनल पे किस जगह से लोग आए, ये दिखता है। मैं अब तो बहुत मुद्दत से नहीं देखा, जब कभी शुरू शुरू में नई ऑप्शन पता चली ना तो आपके सर को मैं कहती थी दिखाएं क्या। और मुझे पता क्या शौक आता था, किस मुल्क से? मुझे हैरत पता कब हुई, अफ्रीका। मैंने कहा अफ्रीका में उर्दू बोलते? जापान, कोरिया, मेरे लिए ये नए नाम थे, क्योंकि हमने किसी को कभी कोरिया चलो नहीं सुनता, कहते सुना दुबई चलो ही जाते थे लोग, लंदन ही सबके दिमागों पे था बचपन से, यही दो चार नाम से, अमेरिका चलो, है ना। लेकिन अल्लाह के बंदे बैठे हुए हैं ऐसी ऐसी जगहों पे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारी नेकियों से जहाँ खैर गई वहाँ तक रोशनी। अब वो देखिए ना जो माल बचा के बैठे हुए थे, हाय कोई मुश्किल आ गई फिर क्या होगा, अब वहाँ दूसरों से उधार मांग रहे हैं। हमारा इंतज़ार तो करो ना, वेट फॉर अस, प्लीज़ वेट वेट वेट, मैं तुम्हारे पीछे, क्योंकि अपना नूर नहीं होगा। और मोमिन का नूर उसकी नेकियों के मुताबिक, किसी का मदीना था, किसी का फलां, आखिरी नूर पता कितना होगा? ये अंगूठे के ऊपर एक छोटी सी टार्च जलती बुझती, बस वो अपने वजह से टार्च चलाए ना तो आपको उतनी ही जगह पे दिखता है। गाड़ी की कई सेटिंग्स होती है ना लाइट्स की, करीब की लगाएं तो बस बोनर से आगे जगह दिखती है, दूर की दिखाएं तो अगले की आंखों में पड़ती है लाइट। जितनी नेकी उतना, आप दूसरे देख रहे हैं कि इसकी तो बस बड़ी मौजें हैं भाई, और हमारे पास तो टिमटिमाता हुआ, और मुनाफिक का नूर टिमटिमाता होगा, टिप टिप टिप, शुरू में है जैसे बल्ब फ्यूज़ होने से पहले टिप टिप, और ऐन जहन्नुम के जब बीच में आएगा तो बुझ जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, उधार मांग रहे हैं थोड़ा नूर दे दो, रोशनी दे दो। जवाब सुनिए, जवाब दिया जाएगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ, गो बैक टुवर्ड टू दुनिया, और अपनी रोशनी खुद तलाश करो। फल तमिसू, लमिस नहीं, लम्स, यहाँ लफ्ज़ अरबी में आप देखेंगे ना, फल तमिसू, मस नहीं, इल तमसा, बाब इफ्तियाल है। अंधा बंदा ऐसे ऐसी चीज़ें ढूंढता है ना, एक है लम्स, छूना, ये आम है, इल तमस ऐसे है, जाओ ढूंढ के लाओ। नेकियों के बड़े मौके आए थे तुम्हारे पास, भाग दौड़ करने के बड़े मौके आए थे, इल्म हासिल करने के मौके आए थे, माल लगाने के प्रोजेक्ट्स आए थे। अल्लाह का दीन गरीब था, तुम अमीर थे। अल्लाह के दीन के रास्ते के कितने प्रोजेक्ट पीछे पड़े हुए थे, और तुम्हारे बस दौलत संभल नहीं रही थी, टैक्स बचाने के लिए बैंकों से निकाल नकुल के रखते थे, कैश ट्रांजैक्शंस करते थे, इधर से दे दूं उधर से दे दूं, जाओ पीछे लेके आओ। फिर इनके और उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी, बैरियर, जिसमें दरवाज़ा भी होगा। इसके अंदर वाले हिस्से में तो रहमत होगी और बाहर की तरफ अजाब होगा। ये चिल्ला चिल्ला कर इनसे कहेंगे, ज़रा विजुलाइज कीजिए इसको, क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? क्या हम साथ नहीं रहते थे? हम एक घर में नहीं थे बेगम? मैं आपके साथ था, हम एक कमरे में थे। अम्मा, क्या हम एक घर में नहीं रहते थे? बहू, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती थी? भाई बहन, क्या हम सारे एक घर में नहीं पले बड़े थे? वो कहेंगे, हाँ थे तो सही, यस, लेकिन तुमने अपने आप को फितने में डाला। चार चीज़ें नोट कीजिएगा, फतन तुमने अपने आप को फितने में फंसा रखा था, वतरबस तुम, और तुम सही वक्त इंतज़ार में ही बैठे हुए थे कि अभी वक्त आएगा तो करूँगा फिर करूँगा, वरतब तुम, और तुम शक शुभा करते थे कि पता नहीं ये कॉज सही भी नहीं है, पता नहीं ये सही लोग भी हैं नहीं, ये पता नहीं पैसे ही ना खा जाएं, पता नहीं ये ना कर दे वो ना कर दे। और चौथा काम क्या था? और तुम्हें तुम्हारी फजूल तमन्नाओं ने धोखे में ही रखा। नहीं ठहर जाओ बेगम, पता नहीं अभी और जी गए तो क्या होगा, मरने के वक्त देंगे, नहीं अभी जिंदा रहना। देखिए, हम अल्लाह के रस्तों में दे दे के चीज़ें वापस ले लेते हैं, क्यों? पता नहीं जिंदा रहे तो क्या होगा, फिर ज़रूरत पड़ जाएगी। अल्लाह पे एतबार नहीं है आपको? क्या आप वो किराएदार हैं कि जिसको घर में डाल दिया अब निकालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ेगा? ये चौथा फितना था, और सबसे बड़ा भी यही बन जाता है फिर। ये निफाक के चार स्टेप्स हैं, जब तफसील से पढ़ते हैं ना, इन आयतों को पढ़ते हुए कह सकते हैं आपके काटो तो बदन में लहू नहीं है, ऐसे लगता है जैसे हाथ सुन्न हो रहे हैं। एक एक लफ्ज़ में आप अरबी ग्रामर के नाते से खोल कर देखें ना, तो आंखें नहीं बंदा मिला सकता, शीशा नहीं देख सकता। वी कैंट फेस आवर सेल्फ, दूसरों को क्या फेस करना। तुम डिली डेली का शिकार रहे, तुम इफ्स एंड बट्स ही तोलते रह गए, प्रोज एंड कॉन ही नहीं थे ख़त्म हो रहे, प्लस माइनस ही नहीं होता। अच्छा, किधर ज़्यादा सवाब किधर कम, किधर क्या करूँ कितना वो, हाय ये ज़कात है नहीं सदका है, ये खुरात है, अच्छा ये है वो है। हत्तयातिया, यहाँ तक कि आ गया अल्लाह का हुक्म, फरिश्ता आ गया मौत का पैगाम लेकर, और तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा रखने वाले ने धोखे में ही रखा। ये शैतान के धोखे, नफ्स के धोखे। और जीना अभी और करना, अभी बच्चों की शादियाँ, अभी उनकी तालीम, अभी आगे अभी पीछे। अलगरज, आज तुमसे ना तो फिदिया और ना बदला कबूल किया जाएगा, यानी नो रैनसम। ये नहीं कि ले लो और दे दो, आज वही चीज़ें ले आओ तो हम नहीं लेंगे, जो कल ले आते तो आज उसकी वजह से तुम दौड़ रहे होते, मौजें कर रहे होते, और ना कुफार से ना शुक्रों से। देखिए, कुफार के साथ ऐसे लोगों को डाल दिया, क्योंकि इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल असफली मिनन नार, और इन अल्लाह जामिल मुनाफिकीन वल कुफार, सूरह निसा में 5वें पारे के एंड पे पढ़ के आए हैं। मुनाफिक और काफिर जहन्नुम में इकट्ठे होंगे, क्योंकि उनकी आते हैबिट्स बहुत ज़्यादा मिलती थी। और तुम सब का ठिकाना दोजख है, वही तुम्हारी रफीक है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ये दिल होता है जिस वक्त फ़ैसले होते हैं, कि अब तक ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल ज़िक्र इलाही से और जो हक उतर चुका है इससे नरम हो जाएं, इनके दिल पिघल जाएं, ये कोई अच्छा फ़ैसला कर लें, या आखरत के नूर के लिए दुनिया में कुछ कर लें अच्छा फ़ैसला, या फिर और इनकी तरह ना हो जाएं जिन्हें इनसे पहले किताब दी गई थी। फिर जब इन पर एक ज़माना दराज गुजर गया तो इनके दिल सख्त हो गए और इनमें से बहुत से फासिक हैं, खुल के गुनाह करते, फासिक रिबेलियस, अपेरेंटली ओपनली डंके की चोट पे गुनाह करता है, एक एक फंक्शन के कॉन्सर्ट पे और वहाँ नाच गाने की महफिल में 10-10 लाख रुपया लगा देता था, फिर भी थोड़ा था, एक एक फ़ोटो सेशन वाले को 20 लाख दे देता था, और एक शादी करोड़ों में पड़ती थी वहाँ तो दो दो हाथ से देता था। यकीन मानो कि अल्लाह ही ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा करता है। हमने तो तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान कर दी ताकि तुम समझो, बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और जो अल्लाह को खलूस के साथ कर्ज दे रहे हैं, इनके लिए ये बढ़ाया जाएगा और इनके लिए पसंदीदा अजर और सवाब है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं वही लोग, ये सारी बातें ईमान की हैं, ट्रस्ट है ना, बैंकों पर ट्रस्ट है हमें, इन ट्रस्ट और ट्रस्ट दोनों को जमा कर लीजिए, जब जाएंगे ले आएंगे उनसे, पता भी चल जाए ना कि 1 सेकंड के लिए नहीं देंगे, या कटौती कर लेंगे तो हम निकाल लें। नहीं, बैंक वाले बहुत चार्ज करते हैं। अल्लाह पे इतना तो भरोसा हो जितना बैंक पे है। वही लोग अपने रब के नज़दीक सिद्दीक और शहीद हैं। आज आपके मेरे लिए दी बेस्ट लेवल मोमिन बनने का, सिद्दीकियत और शहीद होना। वो वही युति अल्लाह वाली आयत याद कर ले, सूरह निसा की शायद 69 आयत है। सिद्दीक बनेंगे हम इंशाल्लाह, फिर फ़फ़िरु इलल्लाह होगा, फिर हम वो पोजीशन होल्डर होंगे। बस साबिकुन न साबिकुन, शहीद भी हो गए तो भी इंशाल्लाह उम्मीद है मार्जिन मिल जाएगा। इससे नीचे वाले बस असहाबुल जमीन है, सालेहीन है, और वो भी अच्छे हैं। इनके लिए इनका जर और इनका नूर है। और जो लोग कुफर करते हैं और हमारी आयतों को छुटलाते हैं, वो जहन्नमी हैं। हदीस सुन लीजिए बुखारी की 2917। बखील जो ज़कात नहीं देता और ज़कात देने वाले सखी की मिसाल दो आदमियों जैसी है, दोनों लोहे के कुर्ते यानी जिरे पहने हुए हैं, आयरन क्लोथ्स। दोनों के हाथ गर्दन से बंधे हुए हैं ऐसे, पीछे से हाथ करके ना अगर बांधे कोई, मुरादे के हाथ ही नहीं खुलता। ज़कात देने वाला सखी जब भी ज़कात का इरादा करता है तो इसका कुर्ता इतना कुशादा हो जाता है कि ज़मीन पर चलते में घिसटता जाता है। अंदर से वेट लूज़ हो जाए तो कपड़े लूज़ हो जाते हैं ना। अब वो देर है, देर है, जैसे पैसे भी तो कम हुए ना, तो वो जो चेन थी उसको लूज़ हो गई, और वो उसकी चेन जो कड़ा थी वो नरमी में बदल गई। लेकिन जब बखील सदके का इरादा करता है, यानी कभी वो खातिम ताई की कब्र पे लात मारने का इरादा कर ही लेता है, तो एकदम कोई आ जाता है उसका दोस्त, बेली, यार, बेगम, शौहर, मियाँ, बच्चे, ये क्या कर रही हैं आप बातों में आ जाती हैं, आप बहुत इमोशनल हैं मामा, सोच लें अम्मी, खर्चे बहुत हैं, महंगाई भी हो रही है और डिफ़ॉल्ट भी होने वाला है मुल्क, और डॉलर का रेट देखा है आपने कहाँ गया है, और मिल भी नहीं रहा बाजार में। ये बातें करते हैं लोग, अब क्या होगा नतीजा सुनिए। लेकिन जब बखील सदके का इरादा करता है तो इसकी ज़िरह का एक एक हलका इसके बदन पर तंग हो जाता है और कसा जाता है। पैसे की मोहब्बत उसको फुला देती है। तो वो कपड़े जो आपने 1 साल पहले पहने थे तो ठीक थे, अब 1 साल बाद आपको टाइट लग रहे हैं। बखील दिन ब दिन माल के बुखल में तंग से तंग दिल होता जाता है, और इस तरह सुकड़ जाता है कि इसके हाथ इसकी गर्दन से जुड़ जाते हैं, साथ लग जाते हैं। अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी को मैंने ये फरमाते हुए सुना, फिर बखील इसे ढीला करना चाहता है लेकिन वो ढीला नहीं होता। कैसे समझाऊँ मैं आपको इस मिसाल को, समझ तो आई गई होगी। मिट्टी आम हालात में ना नरम होती है, आप जाके बाहर गार्डन में हल्का सा हाथ डालें ना तो मिट्टी आ जाएगी आपके हाथ में। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको हथियारों और औजारों से उठाएं, लेकिन एक पट्टी जिस पे पानी पड़ जाए एक दफ़ा और फिर वो पानी सूख जाए, ठीकरी बन जाती है, ऐसे होता है ना। दिल जितना बुखल में आता है ना, दिल उतना सख्त होता जाता है। और ये जो आयतें हम पढ़ते हैं ना, पहली दफ़ा अगर आप पढ़ रहे हैं तो बड़ा असर होगा। पहली दफ़ा बारिश का पानी दिल पे पड़ता है, दिल ऐसे नरम गुदा हुआ आटे की तरह सॉफ्ट, और आप सूख जाना है थोड़ी देर बाद, तो जब फिर दिल सख्त होगा ना तो फिर और सख्त होगा। सुन सुन कर सुन, दूसरी बार इतना असर नहीं होता। पहला कुरान पहली मोहब्बत है, हर चीज़ ही दिल करता है अमल करूँ। अगर इस वक्त वही नीयत कर लेंगे ना, बच जाएंगे। दूसरी दफ़ा आपने कहना हाँ वो पहले भी आयतें हुई थी, ये भी था, वो भी था, ये भी था, तो क्या सीखा? अल्लाह की रज़ा पाने वाले काम, अल्लाह को कर्ज़े हसना देना है, अल्लाह के कलाम के लिए दिल को झुकाना है, अक़ल से काम लेना है, ईमान लाना है, हक की गवाही देनी है और तस्दीक करनी है। अल्लाह मुझे आपको इससे बढ़कर करने की तौफीक दे। रुकू नंबर 19 है, 20 से 25। अल्लाह जिसे चाहता है अपना फजल अता करता है। एलमु अन्नमल हयात दुनिया लाइबुन वलहुन। अब इंसानी ज़िंदगी के चार फेजेस इस आयत के अंदर से ढूंढिएगा भी खुद से। खूब जान रखो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा, जीनत और आपस में फ़ख्र और गरूर और माल और औलाद में एक का दूसरे से अपने आप को ज़्यादा बतलाना है। जैसे बारिश और इसकी पैदावार किसानों को अच्छी तरह मालूम होती है, फिर जब वो खुश्क हो जाती है तो जर्द रंग में तुम इसको देखते हो, फिर वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है, और आखिरत में सख्त अजाब और अल्लाह की मग़फ़रत और रज़ामंदी है, और दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के सामान के और कुछ भी नहीं। करो क्या? वसारी इला मग़फ़िरत मे रब्बिकुम। बिल्कुल इसी से मिलती हुई आयत आपने सूरत आले इमरान में गज़वे उहद के तनाजर में पढ़ी थी। अब समझिए, और आओ दौड़ो अपने रब की मगफरत की तरफ और इसकी जन्नत की तरफ, जिसकी वुसअत आसमान और ज़मीन की वुसअत के बराबर है। ये उनके लिए बनाई है जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे दे, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। फ़िरू इलल्लाह। आपको समझ आ रहा है इस बारे में ये थीम क्यों आया? नेकियों की तरफ दौड़ धूप करो, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आगे तकदीर से मुतल्लिक बात, ना कोई मुसीबत दुनिया में आती है, ना ख़ास तुम्हारी जानों में, मगर इससे पहले कि हम इसको पैदा करें, वो एक ख़ास किताब में लिखी हुई है। ये काम अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है, ताकि तुम अपने फौत शुदा किसी चीज़ पर रंजीदा ना हो जाया करो, और ना अता करदा चीज़ पर घमंड में आ जाओ। और घमंड और शेखी खोरों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, जो ख़ुद भी बुखल करें और दूसरों को भी बुखल की तालीम दें। सुनो, जो भी मुंह फेरे, अल्लाह बेनियाज और तारीफ़ के लायक है, यानी उसको तुम्हारे मेरे पैसे की, माल की, घर की, गाड़ी की, चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसने पहाड़ों की तहों में सोना रखा हुआ है, हीरे मोती रखे, जवाहरात रखे, समंदरों की तहों में हीरे मोती पड़े हैं, लूलू वल मरजान। तो क्या वो ला के बाहर तुम्हारी मस्जिदों में नहीं डाल सकता? वो तुम्हारा दिल देख रहा है, काम तो अपने वही करता है, तुम भी दोगे फिर भी वही करवाएगा, लेकिन तुम्हारा दिल देख रहा है अल्लाह। यकीनन हमने अपने पैगंबरों को खुली दलीलें देकर भेजा, और इनके साथ किताब और मीज़ान यानी तराजू नाजिल फरमाया, ताकि लोग अदल पर कायम रहें। और हमने लोहे को उतारा जिसमें सख्त हैबत और कुव्वत है, और लोगों के लिए और भी बहुत से फ़ायदे हैं, और इसलिए भी कि अल्लाह जान ले कि इसकी और इसके रसूलों की मदद बिन देखे कौन करता है। बेशक अल्लाह ताला कुव्वत वाला ज़बरदस्त है। तो क्या सीखा? अल्लाह की रज़ा की तलब करनी है, अपने रब की मगफरत की तरफ दौड़ना है, जन्नत की तरफ दौड़ना है, एक दूसरे पर फख्र नहीं करना, दिल शिकस्ता नहीं होना, हक से मुंह नहीं मोड़ना। और आखिरी रुकू नंबर 20 पारे का, 26 से 29, अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। वलकद अरसलना नूह व इब्राहिम, बेशक हमने नूह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा, और हमने दोनों की औलाद में पैगंबरी और किताब जारी रखी, तो इनमें से कुछ तो राह याफ्ता हुए और इनमें से अक्सर नाफरमान रहे। इनके बाद फिर भी हम अपने रसूलों को पै दर पे भेजते रहे, और इनके बाद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को भेजा और इनको अंजील अता फरमाई, और इसके मानने वालों के दिलों में शफकत रहम पैदा कर दिया। हाँ, रहमानियत यानी तरके दुनिया तो इन लोगों ने खुद से ईजाद कर ली थी, हमने इन पर इसे वाजिब ना किया था सिवाय अल्लाह की रज़ा जोई के, बस उन्होंने इसकी पूरी रियायत ना करी, फिर भी हमने इनमें से जो ईमान लाए इन्हें इसका अजर दिया, और वो ज़्यादातर नाफरमान लोग हैं। या अय्युहल लज़ीना आमनू, अब आखिरी दफ़ा पुकार है सूरत में, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्ला, अल्लाह से डरते रहा करो और इसके रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा देगा, और तुम्हें नूर देगा जिसकी रोशनी में तुम चलो फिरोगे, और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमा देगा, अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। ये इसलिए कि अहले किताब जान लें, अल्लाह के फजल के किसी हिस्से पर भी इन्हें इख्तियार नहीं, और ये कि सारा फजल अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे दे, और अल्लाह ही है बड़े फजल वाला। नूर की बातों पे सूरत पूरी होती है। क्या सीखा? हिदायत इख्तियार करनी है, रहम दिली इख्तियार करनी है, नाफरमान नहीं होना, अल्लाह ताला की रज़ा की तलब करनी है, और अल्लाह ताला से डर के रहना है, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना है। आइए पारे और सूरत के एंड पे अपना मुहासबा करते हैं। क्या मैं दुनिया के खेल तमाशों में ही मगन होकर तो नहीं रह गई? क्या मैं माल और औलाद में दूसरों पर फ़ख्र तो नहीं जताती? क्या मुझे याद है कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है? और सूरत हदीद का पैगाम, दुनिया की ज़िंदगी को आखरत कमाने में लगा दो, अपनी उम्र को सही मसरफ में लाओ, वरना हाथ मलते रह जाओगे। अब पछताए क्या होत, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। आज जिंदा हैं, सांसों की डोरी चल रही है, नामे अमाल है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंसान ख्वाहिश करेगा, काश मुझे एक बार दुनिया में जाने का मौका दिया जाए और मैं सदका खैरात कर रहा हूँ। अभी पीछे आपने पढ़ा है, सूरत मुनाफिकून की आखिरी आयतों की तरफ इशारा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पारा पूरा हुआ। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो, यहाँ पे पारा पूरा होता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।